आज हम क्लास कर रहे हैं एकाग्रता पर, और माताएं जो बैठना चाहती हैं यहाँ जाएं, जिनको जाना है सेवा में जाएं, बाकी सोफे जो हैं इन पे आ जाओ, उठ जाओ माताओं, जिनको क्लास करनी वो आगे आ जाओ, सेवा जिनकी है वो जा सकते हैं। एकाग्रता सबसे सुंदर टॉपिक संसार का। अभी अभी श्री गंगानगर में एक बड़े कॉलेज में बहुत भव्य प्रोग्राम था। सब बच्चों की एक ही डिमांड थी, एकाग्रता पर कुछ बताओ। मन एकाग्र नहीं होता, बहुत भटकता है। आज भी जब से क्लास अनाउंस हुआ, कई भाई बहने आ गए यही कहकर एकाग्रता पर क्लास कराना। आज पसंद है टॉपिक सभी को, मन बाबा की याद में स्थिर हो जाए तो ये याद बहुत सुख देती है। अतीन्द्रिय सुख, परम आनंद की भासना होने लगती है। मन बहुत भटका है मनुष्य का, यूं तो युगों से भटकता आया है, पर अंतिम जन्म के भी अंत में कई चीजों ने मन को बहुत भटका दिया है। आप न केवल आज क्लास सुनेंगे बल्कि अपने अंदर झांक कर भी देखेंगे कहां मन भटकता है, बीज क्या है, उसको हटा दिया जाए तो संगम युग की ये यात्रा बड़ी आनंदकारी हो जाए, सुखमय हो जाए। सवेरे भी हम सब याद में बैठते हैं, सब अपनी अपनी योग की स्थिति को जानते हैं, मन स्थिर रहता है या बहुत कुछ उसमें चलता रहता है। बहुत प्रैक्टिकल चर्चा आज हम करना चाहते हैं। हाँ, सभी बैठ गए हैं, अभी बाकी भी बैठ जाएं, अब जो जहाँ है वहीं बैठ जाएं। मन बुद्धि को स्थिर करना है। बाबा का बहुत गुह्य महावाक्य है, बुद्धि को स्थिर करना तुम्हारी बहुत बड़ी साधना है। इसके लिए आवश्यक है बुद्धि को स्वच्छ करें। ये हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जो स्वरूप पर स्थिर होता है। मान लो हमें पांच स्वरूपों का अभ्यास करना है तो एक एक स्वरूप पर हमारी बुद्धि का नेत्र स्थिर होगा और मन उस स्वरूप के बारे में चिंतन करेगा। इसी हॉल में बाबा ने पांच स्वरूपों के कई बार अभ्यास कराए, जो मूल्यों को बहुत प्यार से ध्यान से सुनते पढ़ते हैं याद करें। बाबा ने कहा अपने देव स्वरूप को सामने लाओ, अब सतयुग में जाने की जरूरत नहीं, सामने खड़ा कर दो, ये है मेरा देव स्वरूप। अपने आत्मिक स्वरूप को अपने सामने देखो, ये है मेरा मूल स्वरूप। उस पर चिंतन, स्थिरता और चिंतन जितना गहरा होता है आनंद उतना ही असीम होता है। जितना हमारा मन शांत, अब ध्यान देंगे गहराई से सभी माताएं भी, मन जितना शांत उतना ही मन शक्तिशाली। हमसे चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशंस फैलते हैं। यदि हम अपने मन को एक संकल्प में कुछ समय के लिए भी स्थिर कर दें, बुद्धि को स्थिर करते हैं, अर्थात बुद्धि बाबा के स्वरूप पर स्थिर हो जाए, बाबा के अलावा कुछ समय तक कुछ भी दिखाई न दे, तो बाबा के सारे वाइब्रेशंस बुद्धि में समाने लगेंगे, सब ईश्वरीय खजाने बुद्धि में भरने लगेंगे। तो हमें मन को और बुद्धि को दोनों को एकाग्र करना है। बहुत सारी बातें मेरे मानस पटल पर उभर रही हैं, कुछ मैं संक्षेप में करता हूँ, कुछ विस्तार से। मन को किसने भटकाया, बोलो, सोचो। मनोविकारों ने, काम वासना, क्रोध की अग्नि, मोह का जंजाल, लोभ, बहुत इच्छाएं, अहंकार और मैंपन, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, तेरा मेरा, इन्होंने मन को बहुत भटकाया। पाप ने मन को बहुत भटकाया। आज संसार में बहुत लोगों का मन फास्ट गति से चल रहा है, नींद नहीं आती उनको, समस्या बढ़ती जा रही है। जब ब्रेन को शांत होना चाहिए रात को, तब वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, सोने नहीं देता है। बहुत लोग टेंशन के कारण और मन की स्वीकृति के कारण नशों का प्रयोग करने लगे हैं कि रात को सो तो जाएं, और उन नशों से उनकी शारीरिक स्थिति, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर, सब पर बुरा असर आता है और जीवन नरक में बन जाता है। हम सभी अपने मन को शांत करने का प्लान बनाएं, आराम देंगे मन को कुछ समय। कैसे मन को आराम दें? संसार में भी लोगों ने आजकल कुछ विधियां निकाली हैं, कुछ विपश्यना सिखा रहा है, श्वासों पर ध्यान लगाओ, मन का अवलोकन करो, देखो मन कहाँ कहाँ भटक रहा है, फिर भी बहुत लोग सफल नहीं हो रहे हैं। हमें मन की स्पीड को स्लो रखना है, पहली इम्पोर्टेंट चीज। अगर मन की स्पीड बहुत फास्ट होती है तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। गाड़ी बहुत तेज स्पीड से चल रही हो, सामने कुछ आ जाए, कंट्रोल नहीं हो पाती है। हम ये चेक करेंगे हमारा ये मन किस कारण फास्ट जा रहा है। कईयों को पता भी नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा मन की गति इतनी फास्ट क्यों हो गई है। कोई एक बात अगर सवेरे, रात को, शाम को हो गई तो मन उस पे सोचता ही रहता है, ये चाहते हुए भी कि मन को कंट्रोल कर लें, मन कंट्रोल नहीं होता है। अब हमारे पास उसकी विधि है। मैं दो चीजें आपके सामने रख रहा हूँ और सभी उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जब आप यहाँ हैं सेवाओं में, तो सेवाओं के समय को भी अपनी साधना का समय बना लेंगे। दो चीजें मन की गति को धीमा करने के लिए, मन में श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करना परम आवश्यक है। मन संकल्प शक्ति है। जब हम सुंदर संकल्प अपने मन में क्रिएट करेंगे तो मन के व्यर्थ संकल्प स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। कैसे मन के संकल्प को श्रेष्ठ बनाएं? बहुत सहज विधि, सभी भोली माताएं भी जान लें, स्वमान की प्रैक्टिस से मन के विचार महान हो जाते हैं। स्वमान पर सभी बहुत ध्यान दें। अपने लिए कोई भी पांच संकल्प स्वमान के चुन लें। मुरलियों में बहुत आते रहते हैं, वरदान में, स्लोगन में, मुरली के बीच में भी, जो आपको प्रिय लगे उस स्वमान की बात को प्रैक्टिस में लाएं, फीलिंग में लाएं। मैं ये हूँ, एक अनुभव सुनाया है कई जगह आजकल, बहुत पहले का अनुभव है, अब से 45 साल पहले का। गुजरात से एक युवक मेरे पास आया, आते ही मिला चार्टर्ड अकाउंटेंट था, कहा मुझे आपका एक घंटा चाहिए, बहुत समस्याएं आ गई हैं, मुझे डिस्कस करना है। अब उन दिनों भी मुझे इसका आभास था कि मनुष्य समस्याओं के अधीन क्यों होता है, क्योंकि वो अपनी शक्तियों को भूलता है। मैंने उसे कहा कि एक घंटा तो हम कल मिलेंगे, तब तक आप 50 स्वमान की पॉइंट्स लिख कर लाना। और कैसे लिखना, सभी भाई बहने ये होमवर्क करके देखें जरा, 50 छोड़ दें या 25 लिखना केवल, कैसे लिखना है। मैंने उसको एक विधि सिखाई, मैं एक महान आत्मा हूं, लिख लो। अब इसको धीरे से पढ़ना है, मैं एक महान आत्मा हूं, अंदर जाने दो इसे। तीसरी बार फिर पढ़ो, ये सत्य है कि मैं महान हूं। चौथी बार फिर पढ़ो, स्वयं भगवान ने कहा है तुम महान हो, मैं महान हूं। 50 के लिए मैंने उसको तैयार किया। उन दिनों स्वमान पर बहुत मुरलियां चलती थी। अगले दिन वो आया मेरे पास, मैंने पूछा कि बोलो अब आपकी क्या समस्याएं हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। उसका सीधा सा उत्तर था पहली लाइन में, मेरे पास अब कोई समस्या नहीं रही है। ये मैं जानता था कि उसका उत्तर यही होगा। मनुष्य अपनी शक्तियों को भूलता है, अपनी महानताओं को विस्मृत कर देता है, कौन हमें साथ दे रहा है ये भी भुला देता है। तो छोटी सी बात मन की स्पीड को तूफानी बना देती है, समस्याएं तूफान लगने लगती हैं। जो कुछ भी नहीं है वो बड़ा लगने लगता है, कल किसी ने इंसल्ट कर दी थी, उदास बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये व्यक्ति रोज मेरी इंसल्ट करता है। स्वमान लिखे, स्मृति में आए, आभास हुआ, तुम कितने बड़े हो, तुम्हें तो भगवान सम्मान दे रहा है, इन मनुष्यों से सम्मान लेकर क्या करोगे। काले बादल हट गए, खुशी वापिस आ गई, उदासी समाप्त हो गई। स्वमान की प्रैक्टिस विचारों को महान करती है, मन को एकाग्र करती है। सभी इस प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दें। जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ ऐसे भी भाई बहने हैं जो नहीं समझ पाते ये स्वमान क्या है, क्योंकि सेंटर्स में इन पर कभी विशेष चर्चाएं होती नहीं। वो कोई भी एक स्वमान 50 बार लिखा करे, 108 बार लिखा करे, तो उससे ब्रेन को एनर्जी जाएगी और ब्रेन पावरफुल होता जाएगा। बहुत सारी समस्याएं इससे ही खत्म हो गई हैं। एक सुंदर सा अनुभव आज का ही सुना देता हूँ। गुजरात से मुझे एक फोन आया, डिस्ट्रिक्ट शायद राजकोट था, है उसका भाई घर छोड़ के चला गया था, कर्ज हो गया था, तो बेचारा उदास बहुत होता था। हालांकि कर्ज बहुत ज्यादा नहीं था, पर गरीब परिवार है, घर छोड़ के चला गया, कहाँ गया किसी को पता नहीं। उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे उदास रहते थे। उसके भाई ने फोन किया, बात 3 मास पहले की है। मैंने उनको कहा योग करो, कहा योग तो किसी का भी नहीं लग रहा है। अच्छा 108 बार लिखो, मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ, एक टाइम फिक्स करके और उसे आत्मा देख के आह्वान करना रोज। तो कुछ दिन करने के बाद ही उसका फोन आ गया, पहले तो कि मैं हूँ ठीक ठाक, मैं कुछ काम तलाश रहा हूँ ताकि मैं अच्छा कार्य करके ये कर्ज उतार दूँ। फिर मैंने कहा और अच्छा योग भी कर दो, अब तो आपको संतुष्टि हो गई कि वो जिंदा है। अब अपने मन को शांत करके योग करो ताकि उसको कुछ अच्छा कार्य मिल जाए और वो सफल हो। आज फोन आया, वो वापिस घर आ गया, बहुत अच्छी मनोस्थिति में वापिस आया है, बहुत खुश है, बड़ी उमंग में है। ये संकल्प की शक्ति है। हम अच्छे संकल्प क्रिएट करें, मन एकाग्र हो जाएगा। बुद्धि को एकाग्र करने के लिए बुद्धि की सफाई आवश्यक है। सभी जो भाई बहने बैठे हैं, संसार के मनुष्यों के लिए भी, हम सब के लिए भी, बुद्धि को स्वच्छ करना परम आवश्यक। अब सभी अपने को अंदर चलकर देखें, हमारी बुद्धि में ईर्ष्या है, किसी से बदले लेने की इच्छा है, किसी के लिए वैर भाव है, किसी की संपत्ति पर नजर है, किसी को धोखा देने का संस्कार है, बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं, मोह ममता बहुत है, तो हमारी बुद्धि इन सब से भरी है, एकाग्र नहीं होगी। जिसको अपनी बुद्धि को स्थिर करना है, बाबा के बहुत सारे महावाक्य आप साकार मूल्यों से देखें, जो वैगर बनते हैं वही प्रिंस बनते हैं। अभी कुछ दिन पहले बहुत अच्छी बात मुरली में आई, कितनी सिंपल और गहरी बात, जो बार बार चलते फिरते शरीरी होने का अभ्यास करते हैं उन्हें बार बार राजाई मिलती है। कितनी सुंदर और गुह्य सीक्रेट है इस सृष्टि के लिए। तो हम सभी बुद्धि की सफाई पर ध्यान दें। मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ, कईयों की नजर दूसरे के धन पर होती है। आज भी भाई आया मेरे पास बैठा है यहाँ, कहा मेरा बड़ा भाई कुछ भी नहीं दे रहा है, बहुत अच्छी संपत्ति, राइस मिल, 15 गाड़ियां, ट्रक, सब अपने नाम करा लिया है, मुझे कुछ नहीं देता है। माँ भी उसकी तरफ, बहन भी उसकी तरफ, हमें कुछ नहीं दे रहा है। मैंने उसकी सब बातें तो सुनी, लेकिन उसको एक बात बताई जो सभी को याद रखनी है। मैंने पूछा, उसकी मिसेज कर रही होगी ये काम, बुरा न मानना माता है, कहा वही कर रही है, कहती इनको कुछ नहीं देना है, सब हमारा है। मैंने तो उसको बहुत हल्का किया, तुम्हारे साथ भाग्य विधाता है, उसके साथ पैसा है, तुम्हारे साथ भाग्य विधाता है, कौन अच्छा रहेगा? बोलो माताएं, धन जिसके साथ है वो विजयी होगा, या भाग्य विधाता जिसके साथ है वो महान बनेगा। इसलिए दूसरों के धन पर कड़वी नजर रखना, टेढ़ी नजर रखना, पाप को बढ़ावा देता है, समाज में गलत संदेश जाता है, और ऐसा धन कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता। मेरे पास तो कहानियां हैं, वही लोग आते हैं जिन्होंने अपने भाई की संपत्ति हड़प कर अपने बच्चों के कार्यों में लगाई, बच्चों ने उन्हें अनाथ आश्रम में भेज दिया, एक बच्चे की मृत्यु हो गई, एक बच्चे को साइकेट्रिक डिजीज हो गई। धन में जो सुख ढूंढ रहे हैं और गलत तरीके से, उनको सुख कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपनी बुद्धि को सभी स्वच्छ करेंगे, एकांत और एकाग्रता दोनों का संबंध मुरलियों में बाबा सुनाते रहते हैं। एकांत में जाकर सभी को अपने से बातें करनी चाहिए। अब प्रभु मिलन हुआ है, हमारी जन्म जन्म की इच्छाएं पूर्ण हुई हैं, जन्म जन्म की भक्ति का फल मिला है, अब तो मुझे बाबा से सर्व खजाने प्राप्त करने हैं। बाबा सब कुछ देने आया है, विचार करके देखो। भक्ति में आज भी लोग उससे मांगते हैं, अपनी बातें सुनाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि भगवान सुनता है या नहीं, मदद करेगा भी या नहीं। और हम सब कुछ जानते हैं, हमें मांगने की भी जरूरत नहीं रही, वो अपनी ओर से ही सब कुछ देने आ गया है। तो एकांत में अपने से बात करें, मुझे अपने मन को व्यर्थ में भटकाना नहीं है, इच्छाओं तृष्णाओं के पीछे भागना नहीं है। अब सभी लोग अनुभव करेंगे, देखेंगे कि न धन काम आया न पद पोजीशन, काम आई तो श्रेष्ठ स्थिति, काम आए तो पुण्य कर्म, काम आया तो बाबा का साथ और हाथ, बाकी सब बेकार हो जाएगा। वो क्षण तेजी से हमारे समक्ष आने वाले हैं, इसलिए सेवाओं में भी जो रहते हैं, सेवाओं में मुझे मान मिले, मुझे ही चांस मिले, दूसरे को आगे न बढ़ने दूं, केवल मैं ही सब कुछ करूं, मैं योग्य हूं, ये भिन्न भिन्न तरह की तृष्णाएं मनुष्य को सेवाओं का सुख नहीं लेने देती। अंतर्मुखी हो जाएं, सेवाएं बाबा की हैं, हम तो उसमें निमित्त हैं, हमारा कार्य तो केवल निमित्त भाव से दूसरों को ज्ञान देना, परंतु उससे भी बड़ा काम संसार को वाइब्रेशंस देना है। बाकी काम तो सारे बाबा कर रहा है, हमें यह आभास हो जाएगा आगे चलकर कि यहाँ नीचे वालों ने कुछ नहीं किया, सब ऊपर से कंट्रोल हो रहा था। तो सभी एकांत में जाकर अपने चित्त को श्रेष्ठ संकल्पों से अवश्य भरा करें। एकांत योगियों के लिए सबसे बड़ा वरदान है। जिनको योग का परम सुख पाना हो, वो ये अच्छी तरह जान लें, एकांत उनके लिए सर्वश्रेष्ठ वरदान है। वरदान प्राप्त होते हैं, चिंतन महान हो जाता है, मन बुद्धि स्थिर होती है, और बाबा के वाइब्रेशंस को हम बहुत अच्छी तरह ग्रहण कर लेते हैं। दूसरी जो विधि है मन को एकाग्र करने की, वो है ऐश्वर्यपन और आत्मिक दृष्टि। बस हम दो ही चीजों पर अभ्यास करेंगे, स्वमान, ऐश्वर्यपन और आत्मिक दृष्टि। हमें ये फील हो चलते फिरते, मैं आत्मा अलग, ये मेरा देह, ये मेरी कुटिया, ये मेरी मोटर कार, मैं अलग हूँ। देखिए इसमें कुछ ज्यादा नहीं, जरूरी नहीं आप आत्मा के स्वरूप पर ही एकाग्र हैं। कई लोग इसमें बहुत टेंशन में रहते हैं, हम तो आत्मा के स्वरूप पर ज्यादा एकाग्र नहीं रह पाते। कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा इसकी मालिक हूँ। केवल संकल्प करें योग में एकाग्रता के लिए। नेक्स्ट बात, योग में एकाग्रता के लिए मन को शांत करके योग लगाने का संकल्प न करें। मन में अच्छे विचार, बाबा से प्यार के विचार, कुछ अच्छी अच्छी प्रैक्टिस के विचार रखते हुए योग अभ्यास करें। अगर हम इनके बिना ही ऊपर जाकर बाबा के साथ बैठते हैं तो बहुत जल्दी नीचे आ जाते हैं, संकल्प हमें नीचे उतार देते हैं। आप सबने एक बात सुनी हो, मुझे अचानक याद आ गई है, हमारी बाबा की कहानियों में लोग कोई उसको सुनाते नहीं हैं। बाबा जब शुरू कर रहे थे, बाबा को जब साक्षात्कार हो रहे थे, बाबा को जब वैराग्य आ रहा था, अब श्री बाबा ने थोड़ा थोड़ा प्रवेश करना प्रारंभ किया था तो बाबा ने देखा कि विमान आ गया है मुझे लेने के लिए। फरिश्ते उतरे और कहा चलो स्वर्ग में चलना है, और कहा मैं उस विमान में बैठ गया, विमान उड़ने लगा। जैसे विमान ऊपर पहुंचा मुझे संकल्प हुआ मैं अकेला आ गया और मेरा परिवार। इतना संकल्प आते विमान जमीन पर गिर गया। बाबा की आंख खुली, देखा वही हूँ जहाँ था। बहुत गुह्य गति अंत में काम करेगी। कहीं भी बुद्धि होगी आत्मा वापिस जाने में कठिनाई महसूस करेगी, कहीं भी बुद्धि होगी। एक वस्त्र में भी होगी ना, वो भी आत्मा को उड़ने नहीं देगा। समोसा खाने की इच्छा होगी ना, जाने नहीं देगा। तो हम सभी जरा अपनी बुद्धि को भी स्वच्छ करें और योग में कुछ अच्छे संकल्पों के साथ, कुछ अच्छे लक्ष्य के साथ हम अभ्यास किया करें। आप यहाँ आकर बैठे 6:30 से अभी एक घंटे के समय को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहले हम ऐश्वर्य होकर स्वमान में स्थित होकर बाबा से बातें करेंगे। शुरुआत यहाँ से करें क्योंकि बाबा से बात करने से, प्यार भरी रुधियान करने से मन शांत हो जाता है, प्रभु प्रेम के रस में आ जाता है, तो उसका भटकना समाप्त हो जाता है। फिर अब 3 संकल्प रख लें आप कि अब मुझे बाबा से शांति की किरणें लेकर संसार को देनी है, मुझे बाबा से पवित्रता की किरणें लेकर प्रकृति को देनी है, मुझे सर्वशक्तिवान से शक्तियों के वाइब्रेशंस लेकर निर्बल आत्माओं को देने हैं। लक्ष्य के साथ योग करें। वैसे तो बहुत अच्छा हो लेकिन अभी तक हमारे यहाँ इतना नहीं हो रहा है। बाबा की बहुत अव्यक्त मूल्यां चली थी 70 के आसपास, 75 तक पूरा संगठन एक ही स्थिति में बैठे। तब तो हम लोगों को भी इतना पतन था कि ये सब क्या होता है। मनोवादी बैठाया करती थी संकल्प देकर, क्योंकि अगर मान लो 200-500 भाई बहने योग कर रहे हैं या 1000 कर रहे हैं और सब एक ही संकल्प के साथ एक स्थिति में बैठे कि मुझे सर्व शक्तिवान से शक्तियों की किरणें लेकर चारों ओर फैलानी है, भले किसी का कम हो किसी का अच्छा हो, तो संसार में बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फैलेंगे। टीचर बहने जो यहाँ बैठी हैं वो अपनी क्लास में 10-10 मिनट भी मुरली के बाद या कभी स्पेशल संडे के दिन, छुट्टी के दिन 1-2 घंटे की योग भट्टी रखें और ऐसे संकल्प देते हुए पूरे संगठन को एक ही स्थिति में बैठाएं, तो सेंटर का माहौल भी बहुत पावरफुल हो जाएगा और चारों ओर फैलने वाले वाइब्रेशंस भी अति शक्तिशाली हो जाएंगे। जो घरों में रहते हैं और एक साथ बैठकर योग करते हैं, भाई बैठे हैं, तो एक एक संकल्प दे दिया करें कोई भी एक, और सभी 4-5 जितने भी हैं एक साथ एक ही स्थिति का अभ्यास करें, तो घर में भी वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हो जाएंगे। बहुत क्लियरली मैं सभी को एक बात कह दूं, एकाग्रता का सीधा संबंध पवित्रता से है। ब्रह्मचर्य की शक्ति ही हमारे मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाती है और एक शक्तिशाली मन ही एकाग्र हो सकता है। शक्तिशाली ब्रेन के बिना एकाग्रता होती नहीं। बहुत सारे लोग सेंटर्स में भी आजकल डिप्रेशन वाले आते हैं। मैंने सोचती हैं कि योग से डिप्रेशन ठीक होगा, इन्हें योग सिखा दिया जाए, पर देखने में यह आता है कि योग तो उनका लगता नहीं। वो कहेंगे योग लगाते ही तो हमारा ब्रेन बिल्कुल भारी हो गया, खुशी भी चली गई। इसलिए योग उनका ही लग सकता है जिनका मस्तिष्क भी पावरफुल हो। भारत में प्राचीन काल से ही ये मान्यता चलती आती थी। इसलिए आप सभी जानते ही हैं, चार आश्रमों में आचार्यों ने मनुष्य को बांट दिया था। पहला ब्रह्मचर्य, जब विद्या अर्जन करनी है तब ब्रह्मचर्य का पालन परम आवश्यक। उसका कारण ये था कि बिना ब्रह्मचर्य के बुद्धि सशक्त नहीं बनेगी और विद्या अर्जन करना सहज नहीं होगा। आजकल वो नियम छूट गया, इसलिए विद्यार्थियों को टेंशन होती है। वो विद्वान बनकर कॉलेजों से नहीं निकलते, वो महान बनकर बाहर नहीं आते, केवल इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, केवल उन्हें सूचनाएं दी जाती हैं किसी सब्जेक्ट की, उनका बुद्धि, उनकी बुद्धि डिवाइन नहीं हो पाती। सभी इस बात पर बहुत ध्यान दें, जिन्हें योगी बनना है वो पवित्रता से स्वयं का श्रृंगार करें। जो इस सब्जेक्ट में थोड़े भी कच्चे हैं मन से भी, वो अपने मन को स्ट्रांग करें और एक साइड कर दें। अब जब पवित्रता का मार्ग चुन लिया है, जब चुन लिया सच्चे मन से, तो उसमें परफेक्ट होना है। युद्ध की स्थिति को जितना जल्दी हो खत्म करना चाहिए, इसके लिए आवश्यक है। माताएं तो ये नहीं करती, पर जो युवा वर्ग है आज का, मैं उनके लिए कह देता हूं, चाहे पढ़ाई में मन लगाने की बात हो, चाहे किसी कंपटीशन में सफलता पाने की बात हो, चाहे इंटरव्यू में सफल होना हो, एकाग्रता निर्भयता बहुत आवश्यक होती है। इसलिए गौर करें, इंटरनेट पर आप गलत साइट में जा रहे हैं, गलत चीजें देख रहे हैं, मन विचलित होगा ही। कोई सोचे मैं इंटरनेट पे पिक्चर भी देखता रहूं और एकाग्रचित्त भी हो जाऊं, बिल्कुल अपोजिट चीजें, अंधकार और प्रकाश जितना अंतर है। इसलिए जिसको एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी है, जिसको योगी बनना है या पढ़ाई में एकाग्र होना है, उन युवकों को इंटरनेट केवल उतना ही यूज करना चाहिए जितना उनके लिए उपयोगी है। बाकी रात को 1 बजे तक जागकर पिक्चर देख रहे हैं, माँ बाप सोच रहे हैं पढ़ रहा है बच्चा, लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है और बच्चा पिक्चर देख रहा है, रात को नींद भी अच्छी नहीं आएगी, एकाग्रता नष्ट हो जाएगी। एकाग्रता के लिए प्रॉपर डाइट और प्रॉपर स्लीप, ठीक ठीक भोजन, अच्छी नींद परम आवश्यक है। आप सब अनुभवों से जानते होंगे, ज्यादा खा लिया हो योग लगता है, मन भटक भी ना रहा हो लेकिन योग भी नहीं लगेगा, रात को नींद ना आई हो, 5-7 बार उठ गए हो, योग नहीं लगेगा। एक डॉक्टर साहब कह रहे थे परसों, भाई मैं आया मुझे 4 बजे उठने था, सारी रात सोया ही नहीं, कहीं लेट ना हो जाऊं। एक संकल्प ने नींद बार बार उठाई, कहीं लेट ना हो जाऊं, कहीं लेट ना हो जाऊं। चित्त को शांत करके प्रॉपर नींद, प्रॉपर डाइट, ठीक ठीक डाइट, ना बहुत कम। कई लोग ऐसा भी सोच लेते हैं भोजन छोड़ दो योग बहुत अच्छा लगेगा, असंभव है। भोजन छोड़ने से ब्रेन धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और स्थिर नहीं होगा। इसलिए न बहुत खाना, न बिल्कुल नहीं खाना, न बहुत सोना, न बिल्कुल नींद का त्याग कर देना, एक सुंदर बैलेंस परमावश्यक है हर फील्ड में एकाग्रता के लिए। मोबाइल का जमाना है, युवक सुन रहे हैं ना सभी ध्यान से, मोबाइल का भी इतना यूज नहीं कि आपके मन को भटका दे। अब देखिए विद्यार्थियों के लिए क्या होता है, कई कई फ्रेंड बनाए हैं, आजकल तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जमाना है, सब जानते हैं, इसमें बोलने में कुछ बुराई नहीं है। माताएं भी जानती हैं उनके बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के रखते हैं, एक एक के दस दस होते हैं। अब वो उनसे बात करते हैं, एक दूसरे को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, संतुष्ट नहीं होते, मन स्थिर रहेगा, भटकता है, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। और योगियों को तो इसलिए केवल एक से ही प्यार करना चाहिए, और नीचे अगर प्यार करना है मनुष्यों से तो आत्मिक प्यार, मनुष्यों से आत्मिक प्यार, और बाकी संपूर्ण प्यार एक को समर्पित करने वाले ही एकाग्रचित होते हैं, स्थिर बुद्धि बनते हैं, तब पढ़ाई में भी अच्छा मन लगेगा और योग भी अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आज की मुरली की एक बात आप सबको याद दिला देता हूँ, बहुतों ने कैच नहीं की है वो, क्योंकि इंग्लिश शब्द बाबा ने बोल दिया था। अब आगे चलकर पवित्रता का रिवॉल्यूशन हो जाएगा, मैं सरल कर देता हूँ। वो समय अब आ रहा है जब इस धरा पर पवित्रता की क्रांति आ जाएगी। माताएं और सहज भाव से समझ लें, आप सबको एक प्रैक्टिकल का अनुभव है। हर पांच साल के बाद जब भारत में एमपी का इलेक्शन होता है, सबके मन पर बोल अखबार टीवी चैनल क्या होता है, इलेक्शन इलेक्शन, वहां से फलामा जीतेगा, उस पार्टी का फोर्स चल रहा है, ये है वो है, होता है ना, इसको क्रांति कहते हैं। अब ये सृष्टि का चक्र चलते चलते वहीं पहुंच रहा है जहां से शुरू हुआ था। तो आदि संस्कार सभी आत्माओं के पवित्रता के संस्कार पुनः जागृत होंगे। आज बाबा की मुरली में बहुत गुह्य बात थी, संसार का हर व्यक्ति पवित्र बनना चाहेगा। सुना है सभी ने आज, बिल्कुल यही शब्द थे बाबा के। तो हम एक ऐसे समय के समीप आ गए हैं जब इस वसुंधरा पर, इस धरा पर आध्यात्मिक क्रांति होने जा रही है, पवित्रता की क्रांति होने जा रही है। इन मनोविकारों से सभी ऊब जाएंगे, दो चार साल में आप देखेंगे युवकों को भी पता लग जाएगा ये जिंदगी को नष्ट करने वाला खेल है मनोविकारों का, सबको इनसे वैराग्य होगा। और हम सब में से जो बहुत पवित्र बन गए हैं, जिन्होंने अपने कर्म इंद्रियों को योग बल से शीतल कर लिया है, जिन्होंने पवित्रता को अपनी शक्ति बना दिया है, उनके वाइब्रेशन सभी मनुष्य आत्माओं को, जीव प्राणियों को, प्रकृति को पवित्र बनाने में सबसे बड़ा काम करेंगे। इसलिए मैं उन श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को ये बात कह रहा हूँ जिनके जीवन का लक्ष्य बहुत महान है, जो इस ईश्वरीय कार्य में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, देना चाहते हैं, जो यहाँ कुमार बैठे हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा त्याग कर दिया है विकारों का, अपने जीवन को अर्पित कर दिया है ईश्वरीय कार्य में, अब वो चिंतन करें मुझे आने वाले समय में जो पवित्रता की क्रांति इस धरा पर आनी है, जो आध्यात्मिक क्रांति इस धरा पर आनी है, उसमें मुख्य भूमिका निभानी है, देखने वाले नहीं मुख्य पार्ट बजाने वाले बनना है। सभी जो समर्पित कुमार और बहनें यहाँ बैठी हैं, वो एकांत में अपने से इस तरह बातें किया करें। सब्जेक्ट बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, किसी के पास भी यदि मोह की अति है, मन बुद्धि भटकती रहेगी। दो चीजों को ले रहा हूं मैं अब पांच मिनट के लिए। किसी के पास यदि इच्छा इच्छाएं बहुत हैं, धन बहुत पाने की अभिलाषा है, बुरा तो नहीं है। मेरे पास पर्सनली कोई पूछने आते हैं तो हम उन्हें ये नहीं कहते तुम धन को न बढ़ाओ, बढ़ाओ, लेकिन जहां ये चीजें तृष्णा में बदल जाती हैं, जहां ये हमारे मानस पटल पर रात दिन छाई रहती हैं, वहां ये चीजें योग का सुख नहीं लेने देती। मोह को समाप्त करने के लिए माताएं सोचती होंगी हमको ही ज्यादा मोह है, भाइयों को भी बहुत है। मोह की गति सबसे सूक्ष्म है, दो चीजों की गति मुझे बहुत सूक्ष्म नजर आती है, ऐसे तो बहुत चीजों की है, मोह और मैंपन। भय की गति भी बड़ी हुई है, मनुष्य को पता नहीं चलता उसको किस चीज का भय है, क्यों वो डरा डरा है। तो मोह को समाप्त करने के लिए दो विधि अपनाएंगे, बच्चे पोतरे जो बहुत स्वीट हैं, जो आपको आकर्षित करते हैं, बड़ी नेचुरल चीज है, बच्चे निर्मल हैं, पवित्र हैं, सबको आकर्षित करते हैं, उन्हें आत्मिक दृष्टि से देखा करें, प्यार दो, उनकी पालना करो, उनमें महान वाइब्रेशन भरो, ये मात्र शक्ति का कर्तव्य है, लेकिन आत्मिक दृष्टि के साथ साथ। दूसरा, सभी भाई बहनों को अभी से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, सभी भाई बहनें अपनी उन चीजों को भी देख लें जो उन्हें उन्होंने संभाल के रखी है, जो ऐसी छुपा के रखी है कि समय पर ये काम आएंगी। माताओं के पास कुछ गुप्त माल भी है, वो रखा है अंदर, उसे देखो ध्यान से, यहीं से देखो। जमीला बहन बहुत हंस रही है, उसे ध्यान से देखो और संकल्प कर दो ये सब विनाशी है। अगर आपके पास 5 किलो सोना भी है, सतयुग में 5 किलो भी तो 5 ईंटें होंगी जो आपके छोटे से मकान के एक तरफ लग जाएंगे। अथाह धन संपदा मिलने वाली है, लेकिन मिलेगी उसे ही जो यहाँ छोड़ेंगे, कुछ छोड़ेंगे। साकार में बाबा थे तो हमारे यहाँ एक कहावत प्रचलित होती थी, भाई मुट्ठी बंद की हुई है, अब खोलो तो बाबा भरे ना, समझ गए ना इसके रहस्य। तृष्णाओं के पीछे स्वयं को भटकाना नहीं है। अभी कल परसों ही हम ट्रेन से आ रहे थे, एक गुजरात का मिलिट्री का व्यक्ति मिला, कहने लगा मुझे अब रिटायरमेंट लेके आपकी संस्था में आ जाना है। मैं खुश हुआ कि गुजरात के लोग भी मिलिट्री में हैं, मैंने तो पहली बार किसी को देखा, एक दो ही देखने को आए हैं आज तक। मैंने कहां तक प्रमोशन हो गई कि नहीं, ऐसे तो मेजर हो गया हूँ, पर ये तृष्णाएं तो कभी मिटती नहीं है, प्रमोशन की इच्छा, और ज्यादा पेंशन मिल जाए, और 5 साल नौकरी कर लूं। का नहीं, मेरी 22 साल हो गई, 2 साल और पूरा करके मैं तो ब्रह्मा कुमारी में जुट जाऊंगा पूरी तरह से। हमने उसे बताया जाकर कोर्स कर लो, छुट्टी पे जा रहा था। तो देखिए ये इच्छाएं और तृष्णाएं, इनका कहीं अंत नहीं है, हमें इनका अंत करना होगा तो हमारी मन बुद्धि स्थिर हो जाएगी। अब सभी बहुत अच्छी तरह से चिंतन करेंगे, टॉपिक तो बहुत बड़ा है, 10 क्लास हो सकती हैं विस्तार से इस पर। निगेटिव सोचने की आदत मन की एकाग्रता को नष्ट करती है, बहुत सेंसिटिव नेचर मन को भटका देती है, जिद की नेचर, रोने रूठने की नेचर मन बुद्धि को अस्थिर कर देती है। लक्ष्य बनाएं, मुझे मन बुद्धि को स्थिर करना है और स्वयं को बहुत बहुत शक्तिशाली बनाना है, ताकि हम बाबा से वो सब कुछ ले सकें जो जन्म जन्म की हमारी अभिलाषा थी। मन बुद्धि स्थिर नहीं होगी तो ज्ञान भी हमारी बुद्धि में ठहरेगा नहीं। शेष चर्चा फिर कभी करेंगे, अब हम 5 मिनट के लिए गीत बजा दो कोई अच्छा सा। लास्ट एक बात और कह दूं, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे अभी। मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूं, मन बुद्धि की मालिक हूं, अपने मन को आदेश देंगे शांत हो जाओ, बुद्धि को आदेश देंगे स्थिर। तो गीत बजता है, पहले हम अपने को आत्मिक स्वरूप में लाकर मैं स्वराज्य अधिकारी हूं इस फीलिंग में, और फिर सर्वशक्तिवान पर बुद्धि को स्थिर करेंगे और फील करेंगे। बिल्कुल सिंपल कर लेते हैं कि सर्वशक्तिवान ऊपर से नीचे आकर हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया बन गए। बस इन चीजों का चिंतन करते हुए एक सुंदर अनुभव प्राप्त करेंगे।
Bye.